10 बिहारी और घनानंद। बिहारी और घनानंद दोनों रीतकाल के दो भिन्न भिन्न दृष्टियों के कवि हैं। दोनों रीत के बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि न तो बिहारी ने नायक नायिका भेद, रस, अलंकार आदि के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और घनानंद ने। पर रीत के प्रभावों से कोई मुक्त नहीं है। रीति को एक दृष्टिकोण मानने पर ही बिहारी को रीतिबद्ध और घनानंद को रीतमुक्त कहा जा सकता है। बिहारी आभिजात्य रुचि के कवि थे, सामंती आभिजात्य के। रीतिकाल के किसी भी कवि का व्यक्तित्व तो इतना निर्लेप और तटस्थ नहीं था। लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मतिराम, देव, पद्माकर आदि में भी बिहारी किसी तटस्थता और निर्वैयक्तिकता नहीं थी। इस दृष्टि से वे रीतिकाल के अकेले कवि हैं। केवल उन्हीं की रचनाएं क्लासिकल श्रेणी में रखी जा सकती हैं। मतिराम, देव और पद्माकर में वैयक्तिकता का स्पर्श था ही। रीतिबद्ध कवियों कोश में लक्षण उदाहरण से संबद्ध कवियों में देव में सबसे वैयक्तिकता और अनोखापन कोष्ठ में यूनिकनेस दिखाई देता है। लेकिन घन आनंद, बोधा, ठाकुर आदि की रचनाएं उनके भोगे हुए जीवन की कलात्मक परिणतियां हैं। इनमें भी घन आनंद का दर्द सबसे अधिक तीखा और गहरा है। इन दोनों कवियों के काव्यों में उनके व्यक्तित्व का पूर्णतः प्रतिफलन हुआ है। बिहारी की नागर रुचि ने भाव संपदा पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना बाह्य परिष्कृत और पूर्णता पर। नायिका के रूप, कांति, आभिजात्य, मार्दव आदि का जो वर्णन बिहारी ने प्रस्तुत किया है वह निर्विकार और तटस्थ है। हाव अनुभाव के क्रीड़ा चित्रों की रेखाएं बिहारी को एक सचेत और कुशल निर्माता सिद्ध करती हैं। राजाओं और सामंतों ने वस्तु तथा चित्रकला में जिस कारीगरी को प्रश्रय दिया था वह बिहारी के काव्य में भी अवतरित हो उठी है। जाहिर है कि उनमें स्थापत्य और उसके शिल्प का महत्व अधिक है और अनुभूति का कम है। घन आनंद ने प्रेम की पीड़ा को भोगा है और उसे काव्य में बांध दिया। प्रेम निरंतर पीड़ित रहने की प्रक्रिया है। इसकी दो परिणतियां हैं, पीड़ा का आयोग या उसकी कलात्मक निर्मित। घन आनंद के दर्द ने ही उसे कवि बनाया। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। मध्यकाल के परिवेश में इस युक्ति का बहुत अधिक महत्व है। रीतिमार्गी कवियों ने पंडितों, प्रवीणों, राजाओं, महाराजाओं के लिए, राज्यसभा में बढ़पन पाने के लिए कविताएं लिखीं। घन आनंद की कविता स्वतः स्फूर्त है। इसी तरह की कविता के लिए पंत ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इसीलिए घन आनंद के काव्य का जो रूप है वही वस्तु है, या जो वस्तु है वही रूप है। रीतिबद्ध कवियों का वर्ण और वर्णन अलग अलग किया जा सकता है। उनकी रचनाओं की वर्णन पद्धति अलंकार योजना का एक पूर्व निर्दिष्ट वर्ण का निर्देश करती है, किंतु घन आनंद में वर्ण और वर्णन एक रूप और अभिन्न है। भाषा काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, फिर भी भाषा के माध्यम से अनुभूतियों को पूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाषा छलनामयी है, लेकिन भावाभिव्यक्ति के लिए भाषा का माध्यम ग्रहण करना अनिवार्य होता है। घन आनंद को इसका बोध था। अक्षरय मन को हरे, बहु अक्षर ही भावय, रूप अक्षरातीत ताहि अक्षरय बतावय, तत्व बोध बौरानी में अक्षर गति अक्षर लहें। अक्षर मन को छलता भी है, वह उसका सहायक भी है। रूप का सम्यक बोध अक्षर द्वारा संभव नहीं है, किंतु इसके अतिरिक्त वह कौन माध्यम है जो उसे उजागर कर सकता है। पागलपन में ही, समाधि से स्थिति में ही अक्षर की गति पहचानी जा सकती है और काव्य तत्व का बोध हो सकता है। भाषा के संबंध में घन आनंद ने जो बात उठाई है वह आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक चिंतन के मेल में है। भाषा इतनी घिस गई है, वह इतनी वितर्कपूर्ण हो गई है कि उससे भावाभिव्यक्ति में बाधा पड़ती है। कवि उसकी जड़िमा को तोड़कर उन अर्थों को भी संकेतित करता है जो भाषातीत है। भाषातीत अर्थ की पकड़ बिहारी में नहीं है। बिहारी का काव्य ध्वनि काव्य है, किंतु उसमें भी कवि ने व्यंजना की परिपाटीबद्ध शरण को ही अपनाया है। इस भाषातीत अर्थ की पकड़ वही कर सकता है जो भाव भी ना हो, जो प्रेम में पागल हो। बिहारी के काव्य को समझने के लिए काव्यशास्त्रीय नियमों और रूढ़ियों की अवगति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हाव भाव हेला नायिका भेद अनुभवों के रूप रंग से परिचित होने पर भी अर्थोद्घाटन हो सकता है, किंतु घन आनंद की कविताओं को समझने की पात्रता उसी में है जिसने ही आखिन नेह की पीर तकी। संभवतः अपनी व्यवस्थित और परंपरा भुक्त परिपाटी के कारण ही बिहारी सतसई राज दरबारों में समादृत होकर राजकुमारों के पाठ्यक्रम में दाखिल कर ली गई। आज भी उसकी पढ़ाई के मूल में शास्त्रीय व्यवस्थाओं का उद्घाटन ही मुख्य है। सतसई में पांडित्य उभरा है अनुभूति कम, घन आनंद अनुभूति के कवि हैं वैयक्तिक अनुभूति के। इनकी प्रेम की पीर सूफियाना ढंग की है, यह भी सही है कि उन पर फारसी काव्य का काफी प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव केवल सहायक उपकरण है। उनकी पीड़ा अपने आप इतनी गहरी है और मार्मिक है कि पाठक को हिला देती है, मूव करती है। बिहारी पर भी फारसी का प्रभाव है, किंतु इसे हम फारसी का मैनरिज्म कहेंगे। बिहारी इस मैनरिज्म से ही प्रभावित हैं। फारसी के अप्रस्तुत खेल खिलवाड़ वियोग परक उहात्मक उक्तियाँ मैनरिज्म के ही अंतर्गत आएंगी। इससे पाठक मूव नहीं होता, चमत्कृत होता है। यह चमत्कार ही उनकी कविता का केंद्र बिंदु है, प्रेम का स्वरूप। बिहारी प्रेम को चौगान का खेल समझते हैं। इस चौगान के खेल में दांव पेंच लुका छिपी आदि से जीत होती है, किंतु घन आनंद का प्रेम तो निरंतर तपता रहता है। इस ताप व्यथा पीड़ा उदासी आकुलता का नाम प्रेम है। यह किसी परंपरा में नहीं बंधा है, निर्बंध है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम कठ प्रेम है जो बुद्धिजन्य और बुद्धिगम्य है, किंतु घन आनंद का प्रेम दर्द से उत्पन्न है और उसी से गम्य भी है। नेह कथाएं सठनीर मथाएं हठकय कठ प्रेम निबाहें, क्यों घन आनंद भीजे सुजाननी यों अमिले मिलबो फिर चाहें। प्यार के स्वरूप का एक चित्र अजय ने पेश किया है। उस अनदेखे अरूप ने कहा हाँ, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। यह अकेलापन, यह अकुलाहट, यह असमंजस अचकचाहट आरती अननुभव, यह खोज, यह द्वैत, यह असहाय विरह व्यथा, यह अंधकार में जाग कर सहसा पहचाना कि जो मेरा है वही ममेतर है। घनानंद की प्रेमानुभूति कुछ कुछ इसी तरह की है। समस्त रीतिबद्ध रीतमुक्त कवियों में घन आनंद का प्रेम अपने अनोखेपन कोष्ठ में यूनिकनेस के कारण अद्वितीय है। यह अद्वितीयता उनके वैयक्तिक प्रेम के पूर्ण स्वीकार में निहित है। उनके भीतर के भक्त ने आध्यात्मिक प्रेम को उसी में सन्निहित कर लिया। यह प्रेम जगह जगह आध्यात्मिक होकर सूफियों की रहस्य चेतना से अभिमंडित हो जाता है।